Awakening with Brahma Kumari.
नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। दिन प्रतिदिन हमारी ये मुलाकात बहुत गहरी होती जा रही है, बहुत कुछ हम समझ रहे हैं जिंदगी के बारे में, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स जो अभी तक कहीं छिपे थे इतनी आसानी से, इतने सहज रूप से हमारे सामने आते हैं और फिर जिंदगी बहुत सुंदर हो जाती है। और जहाँ एक बार परमात्मा का साथ मिल जाता है, वो शिव बाबा जो हमें इस बात का एहसास देते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर सारी मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। आज एक बार फिर इस सफर को शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस खुशी को हम तलाश रहे होते हैं, जिस खुशी को जीने के लिए, पाने के लिए हमने ये जीवन प्राप्त किया है, उससे क्या क्या एस्पेक्ट्स जुड़े हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दीपा, उनसे बात करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति।
बहुत बहुत स्वागत है अवेकनिंग। सिस्टर दीपा, अगर हम खुशी की बात करते हैं तो बहुत बार हमने खुशी की बात की है और बहुत कुछ जानने की कोशिश की है कि किस तरह से हम उस खुशी को एहसास कर सकते हैं, और हर बार ये बात सामने आती है कि खुशी इज हैप्पीनेस इज विद इन मी, जो हम इमर्ज नहीं कर रहे होते, बाहर तलाश रहे होते हैं। लेकिन उससे जुड़े कई एस्पेक्ट्स जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं?
हम देखते हैं खुशी के साथ साथ हमारा आज देखा जाए तो ये जो शरीर जिसको हम प्रयोग करके अपने कर्म क्षेत्र पर इस परफॉर्मेंस में आते हैं, एक्शन करते हैं, तो इस शरीर का भी स्वास्थ्य, हमें हेल्दी रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, साथ में आज देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में वेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लोगों का भी ये मानना है कि भाई हेल्थ है, वेल्थ नहीं है तो भी खुशी नहीं रहेगी।
तो हेल्थ, वेल्थ एंड बी हैप्पी।
हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों को हम बैलेंस कैसे करें? ऐसे लगता है कि एक को पकड़ लिया, एक को पा लिया, तो दूसरे चीज में कहां ना कहां कॉम्प्रोमाइज करना
छूट जाती है। वेरी ट्रू।
तो खुशी तो प्राप्त कर लिया आध्यात्मिक प्रगति से, लेकिन फिर क्या वेल्थ को भी हम सस्टेन कर सकेंगे या नहीं? और फिर कहां ना कहां क्या हम ये स्पिरिचुअल जो जर्नी में चले जाएंगे तो क्या हमारा हेल्थ इग्नोर तो हो नहीं जाएगा? क्या सोल कॉन्शियसनेस माना इस शरीर के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं रखना?
छोड़ ही देंगे।
तो ऐसे तो नहीं कि हमारे शरीर के प्रति जो स्वास्थ्य का महत्व है वो कम हो जाएगा? तो इसलिए तीनों का संतुलन कैसे हो, ये बहुत जरूरी है, ये आवश्यक है। अगर हम पहली बात स्वास्थ्य का लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हेल्दी अर्थात कौन। तो आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ सब जुड़ा हुआ है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम कई चीजों का ध्यान रखते हैं जो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर भी अगर हम देखें तो ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, गिफ्ट है गॉड का। तो उसको हमें बहुत सुंदर रूप से हेल्दी रखना, उसको स्वच्छ रखना, उसको शक्तिशाली रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है। पहली बात है आज हेल्थ से संबंधित डाइट का बहुत ध्यान दिया जाना है, तो हम देखते हैं वो भी बहुत जरूरी है। आज हमें अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है, जो भी चीज हम खाते हैं, स्वीकार करते हैं, उसमें हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज डॉक्टर्स हमको कहते हैं कि इस समय हम बीमार नहीं है, इसका मतलब हम हेल्दी है ये भी नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, उसके लिए हम क्या भोजन स्वीकार कर रहे हैं और किस मन की स्थिति से हम उसको खा रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
लेकिन हुआ ये है कि हमने इस पूरे गैम्बिट में जो हम जो चल रहे हैं, जैसे उसमें ना तो हमने मन का ख्याल रखा है और ना शरीर का, मतलब बिल्कुल कहीं भूलते जाते हैं। हमने आवाज की बात की थी तो शरीर की आवाज को तो हम बिल्कुल ही अनसुना कर देते हैं और मन की आवाज को भी।
तो शरीर को भी भोजन चाहिए, शरीर को स्वस्थ जो हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू है ऐसा भोजन चाहिए, लेकिन मन को क्या चाहिए? मन को तो अच्छे विचार चाहिए, सकारात्मक चिंतन चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव थॉट्स चाहिए, जिससे मन का जो स्वास्थ्य है वो मजबूत होता जाए, जिससे मन जो भी कार्य कर रहा है उसमें उसकी दृढ़ता हो, उसे खुशी हो। तो वो माइंड को हम पॉजिटिव थॉट्स, भोजन जो है रोज प्रोवाइड करते हैं। शरीर का तो हमने ध्यान रखा, सारे दिन में तीन या चलो दो बार तो हम जरूर भोजन को प्रोवाइड करते हैं अपने शरीर को, लेकिन मन को हमने विचार कौन से दिए? सारे दिन में हम क्या सोचते हैं? क्या हमें इसको चेक करने का भी टाइम है?
नो, वी एक्चुअली, और सबसे बड़ी बात, अभी तक, अब तो फिर भी हमने ज्ञान में रहते हुए थोड़ी बातें सीख ली, अब तक तो हम ये सोचते थे कि जब हमें किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे मन में क्या चल रहा है तो वो ठीक है, हमारे मन में कुछ भी चल सकता है और ये विचार आते हैं तो मैं थोड़ा इनको कंट्रोल कर सकता हूं।
सही बात है, ये मेरे हाथ में नहीं,
मन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं,
कंट्रोल नहीं, मन मुझे कंट्रोल कर रहा है, मैं क्या करूं? तो हम देखते हैं कि हम क्या सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट है, और हमारे पास ये शक्ति है विचार रचने की. माइंड हैज अ पावर टू क्रिएट थॉट्स. तो इसलिए हम जो चाहें ऐसा विचार हम रच सकते हैं.
वेरी ट्रू.
आज तक हमने सोचा नहीं, जो बातें हो रही है
वही तो विचार बना रही है,
वही सोच हमारी चलेगी. जो हमारे साथ हो रहा है, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, उस अनुसार ही हम सोच सकते हैं. बाकी मेरे पास वो चॉइस है या मेरे पास वो आध्यात्मिक शक्ति है कि मैं अपने मन की वो रचनात्मक शक्ति को फील करूं, क्रिएटिविटी को फील करूं, कि मैं जो चाहूं वो सोच सकती हूं, जो विचार अपने मन को दूं उस रूप से मेरा मन उस दिशा में जाएगा.
वंडरफुल. आई बिकम द ओनर ऑफ माय ओन थॉट्स एक्चुअली.
आई हैव द पावर टू क्रिएट. क्योंकि आज जो कुछ हम देख रहे हैं आसपास वो किसका क्रिएशन है? ह्यूमन माइंड का. हम उसको तो डील कर रहे हैं, उसको तो मैनेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसके साथ हम रह रहे हैं, लेकिन जो क्रिएटर है उसको हमने रिकग्नाइज किया है. तो उस वहां ही अगर हम उसको रिकग्नाइज करके उसको एम्पावर करें, माइंड को भी हम रोज कुछ समय उसको रिफ्रेश करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए समय निकालें, तो ये बहुत जरूरी है. तो मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, तो बहुत यू नो बैलेंस हो जाता है. और हमारे विचारों का प्रभाव आसपास कितना पड़ रहा है, एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाती है, हमारे शरीर पर पहले पड़ता है. क्योंकि आज डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सिर्फ क्या आप खाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्या खाता है वो भी इम्पोर्टेंट है.
बहुत कुछ खा रहा होता है आज के वक्त में. अगर हम देख रहे हैं तो चारों तरफ से इस तरह से खींचे जा रहे हैं हम.
सही बात है. तो अगर सारे दिन में मन में ज्यादा से ज्यादा विचार तनाव के हैं, एंजाइटी के हैं, भय के हैं, वो फीलिंग्स ज्यादा है, तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है. तो हम देखते हैं फिर हमारा स्वास्थ्य जो है, दवाई आदि ले रहे हैं, सब कुछ हम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हेल्दी फीलिंग है वो नहीं आती. तो इसलिए हमारे विचारों को भी सारे दिन में कुछ समय निकालकर हम उसको चेक करें और उन विचारों को जेंटली दिशा दें. क्योंकि आज व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, मन पर हम कैसे प्रेशर कर सके, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. लेकिन कंट्रोल करने की बात नहीं है, वेरी जेंटली अगर हम मन को दिशा देते जाते हैं, उसको कोई पॉजिटिव थॉट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए रोज सारे दिन में कुछ ऐसे विचार अपने आप को देना, प्रोवाइड करना आवश्यक है.
उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. हमने एक बार बात की थी कि थॉट जनरेट कैसे होते हैं. तो थॉट जनरेट हमने देखा कि पास्ट एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम हमारा और जो इन्फॉर्मेशन देते हैं.
सही बात. तो ये तीनों चीजों के प्रति भी जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और उसमें से पॉजिटिव लेते जाते हैं, भले अनुभव कुछ बातें नहीं भी अच्छी होगी, लेकिन जो पॉजिटिव अनुभव है वो अच्छे अनुभव है, उनमें से अच्छी बातें हम अपने मन को याद कराते हैं. अगर वर्तमान में हम देखें तो जो आसपास के वातावरण है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उसमें कहाँ हम समाधान की दिशा में चल सकते हैं, ऐसे थॉट्स हम अपने आप को देते हैं, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने वाले थॉट्स देते हैं, अपने में कॉन्फिडेंस लाने वाले थॉट्स देते हैं. जो कार्य हम करने वाले हैं उस कार्य की सफलता के लिए हम विचार करते हैं. तो जब मन उस रूप से दिशा हम देना शुरू करते हैं मन को, तो मन सक्षम हो जाता है, मन बहुत पावरफुल हो जाता है और मन हेल्दी फील करता है. तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर ऑटोमेटिकली
मन नेचुरल फील करने लग जाता है ना, कि सहज हो गया सब कुछ.
सही बात है. और अगर शरीर की तबीयत ठीक ना भी हो, लेकिन माइंड अगर हमारा पावरफुल है, पॉजिटिव है, तो वो हीलिंग प्रोसेस में उसको मदद करता है. तो हमारा मन अपने शरीर को भी वो पॉजिटिव थॉट से गाइड करता है. तो आज हम देखते हैं कई साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं. तो वो रिसर्च ये देखते हैं कि मन के विचारों का हर एक एलिमेंट ऑफ नेचर पर प्रभाव पड़ता है. वाटर पर कई साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया है कि पानी जो है उसके प्रति हम जो सोचते हैं उससे पानी की भी प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है.
जो क्रिस्टल फॉर्म हो रहे होते हैं वो हो जाते हैं जब पॉजिटिव है, और जब नहीं होते हैं तो वो डाइल्यूटेड.
अगर सिर्फ वो पानी एक ऐसे वातावरण में है जहाँ नेगेटिव फीलिंग्स है या नेगेटिव वाइब्रेशंस है, या म्यूजिक भी ऐसा है जहाँ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो उस पानी का प्रभाव अलग हो जाता है. क्रिस्टल्स फॉर्मेशन जो है वो परिवर्तन हो जाता है. तो हमारा शरीर 80% पानी है. तो आप सोचिए जो हम सोच रहे हैं वो हमारे शरीर पर कितना असर होता है. और सिर्फ पानी नहीं, हर एक एलिमेंट ऑफ नेचर पर इसका प्रभाव पड़ता है. तो इसलिए हमारे शरीर को हम अगर हेल्दी लाइफस्टाइल में रखना चाहते हैं, तो हमारे मन को कोई पॉजिटिव और क्रिएटिव थॉट्स देना आवश्यक है. और जैसे हम शरीर को भी हम भोजन जो देते हैं वो पौष्टिक के साथ साथ स्वादिष्ट भी होना जरूरी है, नहीं तो हम रोज उसको लेंगे नहीं. तो हमारे माइंड को भी अगर वैरायटी थॉट्स हम देते हैं, मेडिटेशन या हम स्पिरिचुअल नॉलेज जो है उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम इंजॉय कर सकते हैं। तो उसमें हम जब वैरायटी थॉट्स देते हैं अपने माइंड को, हर दिन कोई नए विचार नई भावनाएं हम अपने मन को देते हैं तो मन उसको इंजॉय करता है। तो जैसे आज हम कहते हैं ना कि क्या करें, नहीं सोचना चाहते लेकिन फिर भी चिंता आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो धीरे धीरे मन इसको इतना इंजॉय करना शुरू करता है, उसमें इतना पावर उसको महसूस होता है, उसमें प्रैक्टिकल में सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं कि मन अच्छे विचार करने की आदत पड़ जाती है।
और फिर क्या होगा कि जैसे ये अब मेरे साथ होता है कि जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आता है मुझे डिस्टर्बेंस होती है, एंड देन आई रियली वांट टू नो, तब पॉज लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि कहाँ गलत हो रहा है।
तब हमें स्टॉप करना है, ऑब्जर्व करना है, फिर स्टीयर करना है। तो हम देखते हैं वो एक मिनट साइलेंस जरूरी, बहुत जरूरी है अपने साथ, और उसके साथ साथ रेस्ट, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। नहीं आज हम देखते हैं अगर आप उसको समय पर रेस्ट नहीं देते तो वो ले लेता है, पर ऐसे समय पर लेता है जहाँ आपको एक्टिव रहना जरूरी है,
और फिर वो बहुत लॉस हो जाता है,
लॉस हो जाता है। तो शरीर को भी रेस्ट देना अर्थात स्लीप, द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप। नहीं आज हम देखते हैं क्वांटिटी तो हम फिर भी कभी कभी दे पाते हैं, लेकिन क्या हम क्वालिटी स्लीप दे पाते हैं अपने आप को? तो स्लीप के पहले भी अगर हम देखें कि सोने के पहले भी अगर हम अपने मन को उस रूप से फिर से इजी रखते हैं, सारे दिन की दिनचर्या जो हो गई है, जो भी बातें हो गई है, अगर हम उनको सामने लाके उनको रैप अप करते हैं, समेट लेते हैं, जो बातें अच्छी है वो तो एक बहुत गुड एक्सपीरियंसेस हो गए, वो ट्रेजर है, लेकिन जो बातें ठीक नहीं चल रही है, जो हमको लगा कि ये मेरे साथ होना नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, तो वो बातों को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हम फिर से उससे इंस्पिरेशन लेकर आगे मुझे क्या करना है, और फिर हम देखते हैं कि कई बार कोई गलती हो भी जाती तो उसका गिल्ट नहीं हम कैरी करें, वो गिल्ट जो है, वो पेन जो है, या फ्यूचर के बारे में जो एंजाइटी है, नहीं कुछ हमने प्लान किया दूसरे दिन के लिए, होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो जो फियर है या एंजाइटी है या जो टेंशन है, वो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप पर इफेक्ट करता है।
बिल्कुल, तो वहाँ वही फुल स्टॉप करना, आई स्टिल रिमेम्बर दैट व्हेन यू सेड कि फुल स्टॉप करना, जो भी पास्ट है उसको करना बहुत जरूरी हो जाता है,
बहुत जरूरी है। और फिर हम उस निश्चिंत रूप से जब हम आराम करते हैं, सो जाते हैं, तो वो क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होती है, और जो विचारों से, जो पॉजिटिव फीलिंग्स से और जो पॉजिटिव थॉट्स से हम सो गए हैं, उसी पॉजिटिव थॉट से हम अवेकन करते
हैं, वो तो
हम परमात्मा को अपना सारी दिनचर्या सौंप देते हैं और उनसे प्रेरणा और शक्ति लेकर दूसरे दिन का प्लान उसको दे देते हैं। तो फिर वो प्लान ऑटोमेटिकली बहुत नेचुरल लेवल पर हम सारे दिन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग से और एक बहुत पॉजिटिव स्पिरिट से, उस एंथुसियाज्म से हम उठ सकते हैं, और फिर उस सारे दिन में जो कार्य करना है बहुत सुंदर इजी इंस्ट्रूमेंट के रूप में उस ईश्वरी शक्ति के आधार से हम कार्य कर लेते हैं।
बहुत सुंदर आपने बात कही कि वो रेस्ट, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल की बात है, वो हेल्थ के लिए अगर हमने न्यूट्रिशन की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो रेस्ट भी एक कंपल्सरी एस्पेक्ट है जिसे हमें समझना। और सबसे ज्यादा हम अपने साथ जो है इनजस्टिस करते हैं। एक बार आपने कमिटमेंट की बात की थी, तो कि कमिटमेंट जो है अगर आपके काम के प्रति है तो अपने प्रति भी,
अपने प्रति भी है, रेस्ट के प्रति भी है, तो हमें रेस्ट मन अपने आप को भी देना है। तो मन को भी सारे दिन में रेस्ट में रखना है। फिजिकली हम कितना भी एक्टिव रहें, लेकिन माइंड जो है, इंटरनल जो कामनेस है, जो हमारा ट्रैंक्विलिटी है, वो बेस हमारा जरूर है। तो वहां अगर हम देखते हैं कि अगर हम रिलैक्स रहते हैं, ईजी रहते हैं, तो फिजिकली हम कितना भी बिजी रहें बैलेंस हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, माइंड के ही रेस्ट को डिस्टर्ब कर लेते हैं, उसमें इतना स्ट्रेस आ जाता है, इतनी एंजाइटी आ जाती है, इतना अंदर में कंफ्यूजन और कियोस हो जाता है कि फिजिकली फिर एक्टिव रहने में बहुत डिफिकल्टी होती है। जितना माइंड रेस्ट में उतना ही हम फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। ये बैलेंस, ये की अगर समझ लिया कि मन को आप अगर बहुत स्ट्रेस्ड रखेंगे, बहुत प्रेशर फील कराएंगे, तो फिर कारोबार में आपकी एक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। आप बहुत कुछ करेंगे जो, लेकिन राइट जो करना है शायद वो नहीं,
एनर्जी काफी कुछ ही कंज्यूम हो चुकी होगी, एनर्जी लेवल्स तो एक ही रहेंगे, तो या तो इधर आप कर्म में निकाले उसे, या फिर माइंड को सेट स्टेबल करने में निकाले जाए। आगे अगर हम बात करते हैं हेल्थ के पूरे एस्पेक्ट के बाद, अब हम चलते हैं उस पूंजी की तरफ,
पूंजी की तरफ, वेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि आज व्यक्ति काफी समय जीवन का बिता देता है वेल्थ कमाने के लिए, उसमें हेल्थ का ध्यान तो नहीं रखता है, फिर बाकी का जीवन उसको फिर से हेल्थ को कमाने के लिए वेल्थ को यूज करना पड़ता है, ये भी आज हम देखते हैं वो बैलेंस नहीं रहता है। वेल्थ भी किस प्रकार से हम देखें, तो एक वेल्थ है मनी जिसको हम रिकग्नाइज करते हैं वेल्थ के रूप में, इसलिए उसी रूप से उसको यूज करते हैं, लेकिन उसके सिवाय भी हमारे काफी इनर रिसोर्सेस हैं, काफी एसेट्स हैं, तो वो वेल्थ के बारे में क्या हम अवेयर हैं? जैसे नॉलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेल्थ, ज्ञान जो है, समझ जो है, तो हम देखते हैं ज्ञान भी अगर हम देखें तो वी आर ऑलवेज ओपन कि नई आइडियाज, नई इन्फॉर्मेशन हो, हम कई सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ लेते हैं, कोई भी नए रूप से जहाँ एक्सपोजर हमें मिले, कोई जानकारी मिले, वी आर ऑलवेज ओपन नए से नई जानकारी
साथ करते जाते हैं,
लेकिन सिर्फ नॉलेज हो लेकिन पावर नहीं हो, शक्ति नहीं हो, वो दृढ़ता नहीं हो उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो वेल्थ नहीं बनता है।
वेरी ट्रू एक्चुअली, और बहुत से लोगों के साथ मैंने देखा है कि इतने नॉलेजेबल हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो कहीं पे भी उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, वो वहीं का वहीं विचार में रह जाती है।
तो कई बार हम देखते हैं सेंटर्स पर भी ऐसे भाई बहन आते हैं नए मेडिटेशन सीखने के लिए, तो युवा है, उन्होंने सभी प्रकार के आध्यात्मिक किताबों को पढ़ लिया है, लेकिन जब वो कोई भी अपने कार्य को शुरू करने की बात करता है तो फिर एकाग्रता नहीं है, लोगों के साथ काम करता है तो वहाँ जेल नहीं हो पाता है, वहाँ कनेक्ट नहीं हो पाता है, कहाँ ना कहाँ बंधन है, समझता है मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बात स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मैं उनके साथ डिस्कस भी करना शुरू करूँ ना, वो मुझसे ज्यादा बेहतर बताता है, वो मुझे इस शास्त्र, उस धर्म के बारे में, हर प्रकार की जो स्पिरिचुअल बुक है, लिटरेचर है, पढ़ा हुआ है,
वो डेफिनेटली आज जिस युग में है, हम इंटरनेट के इस युग में बहुत कुछ जानते हैं, ज्ञान बहुत है हमारे पास,
तो वो मुझे बहुत सारी बातें बता सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो पावर नहीं। तो पावर साथ में होना, शक्ति का अनुभव करना, उसको अंदर हम भरते जाएं, इनर पावर उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, तब ये नॉलेज जो है वो सचमुच एक वेल्थ के रूप में, एक हमें एक कंटेंटमेंट देगा, एक वेल्दी लाइफस्टाइल के रूप में हमारे साथ रहेगा।
आई कैन वॉक ऑन दिस पाथ, दिस एम्पावरमेंट,
तब वो हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाएगा। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि समय, टाइम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे टाइम इज मनी, लेकिन इस टाइम को हम कितना यूज करते हैं एक्यूरेटली। टाइम तो हमारे पास है, अब 24 घंटे से 25 घंटे तो बनने ही बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी इस समय को हम कितना यूज करते हैं एक्यूरेटली, तो कितना वाइजली उसको यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
किस तरफ यूज करते हैं,
किस तरफ यूज करते हैं, उसको कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि टाइम जो है हमारा वेस्ट कहाँ होता है, नहीं इस व्यक्ति ने ऐसा किया, उस ये हुआ इसलिए ये वेस्ट हुआ, लेकिन अगर हम सोचे काफी हमारा टाइम जो है थॉट्स उसमें वेस्ट हो जाता है, जो थॉट्स जो है फियर नेगेटिविटी के हैं, तो वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और वो और ही मुझे डिस्टर्ब कर रहा है,
और हम थॉट में वो इतना ज्यादा रहते हैं कि कुछ काम करने के बाद वो भूल जाते हैं।
फिर हमारे वर्ड्स, तो हम ये रिसोर्सेज को भी आगे देखेंगे कि थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस, ये तीनों रिसोर्सेज है, तो टाइम को अगर हमें वर्थ वाइल रूप में यूज करना है तो ये तीन रिसोर्सेज को भी हमें करना। तो हम टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारी बातें बाहर से तो अडॉप्ट कर लेते हैं कि ये करना है हमें, एक्यूरेट रहना है हमें, टाइम टेबल बनाना है, ये बहुत अच्छी बातें हैं, ये चीजें अपने जीवन में लाना बहुत अच्छा है, इससे हमको बहुत सफलता मिलेगी, लेकिन जो सटल एस्पेक्ट है, जो हमारे इनर रिसोर्सेज हैं कि थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, इसको भी हमने कितना अच्छी तरह से यूज किया, इन रिसोर्सेज को, इस पूंजी को भी कितना जमा की, यूज तो करना है लेकिन उसमें जमा कितना किया, कितना अच्छी तरह उसको इन्वेस्ट किया ताकि वो आपको रिटर्न दे, अक्यूमुलेशन हो उस पावर की, उस एनर्जी की, तो ये बहुत जरूरी है। तो टाइम से संबंधित ये बाकी तीन एनर्जीज भी है, उसमें अगर हम विचार लें पहले, तो हम सोचते तो हैं लेकिन उस सोच में कितनी हमारी स्टेबिलिटी है और कितना हमारा क्रिएटिव थॉट्स है, कितनी उस विचारों में हम पावर भर सकते हैं जो हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करें, थॉट है लेकिन एक्शन से वो अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर वो थॉट जो है
वो वेस्ट है,
वेस्ट
एक्चुअली, वो कितना भी क्रिएटिव हो जाए, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के पास थॉट्स इतने होते हैं लेकिन ज्यादातर कन्वर्जन्स नहीं हो पाते।
हाँ, और स्टेबिलिटी नहीं, बहुत सारा सोचते हैं, तो इसलिए स्टेबिलिटी न होने के कारण मैं अपने ही थॉट्स को जज नहीं कर पाती कि इसमें से कौन सा थॉट यूजफुल है, नेसेसरी है, क्रिएटिव है, और कौन सा थॉट मुझे छोड़ देना है क्योंकि ये वेस्ट और नेगेटिव है, मुझे उसकी अवेयरनेस और उसकी परख नहीं है, क्योंकि वो कुछ मिनट हमने साइलेंस ऑब्जर्व करने के लिए नहीं दिया है। और थॉट्स के साथ ही वर्ड्स भी जुड़े हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ऐसे हमारे वाणी के द्वारा कभी ना कभी वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस होता है, तो सुबह से रात तक हम बोलते तो हैं लेकिन वो वर्ड्स भी हम किस रूप से यूज करें, वो एक एनर्जी है। तो हम देखते हैं अगर हम सिर्फ साधारण बातचीत भी करते हैं तो एक है गिविंग इन्फॉर्मेशन, यू नो योर कम्युनिकेटर, आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक है योर नरेटिंग, इट्स लाइक वो कहानी बना लेते,
क्रिएटिंग,
तो कहानी बना लेते, बात छोटी होती है लेकिन उसके पीछे हम कई 10 बातें बताकर फिर वो बात कहते, तो वहां भी हमारे जो वर्ड्स की रिसोर्स है वो एसेट को हमने यूज ज्यादा किया और उसमें रिजल्ट इतना नहीं हुआ। फिर कहां हम देखते हैं कि हमारे वर्ड्स जो हैं कभी हम रिएक्ट कर लेते हैं तो वो वर्ड्स जो है नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी दो लेवल्स हैं। एक है कि रिएक्शन हो जाता है क्रोध से, हम रूड हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव बोल लेते हैं, लेकिन कहां कहां हम देखते हैं कि लोग वर्ड्स में भी मैनिपुलेटिव होते हैं। रूड होना, गुस्से में आ जाना, फिर भी हम देखते हैं वहां रिएक्टिव फीलिंग है और वो रियलाइजेशन बाद में होती है, लेकिन एक है टू प्लान टू हर्ट पीपल, यू नो, तो वो मैनिपुलेटिव जो है, वो वर्ड्स जो है वो हमारी काफी एनर्जी और कई बार रिलेशनशिप्स को समाप्त कर लेते हैं। तो ये रिसोर्स को हमने किस रूप से यूज किया, नेगेटिविटी में भी किस प्रकार से लेवल्स हैं, और फिर पॉजिटिविटी में हम देखें कि एक लेवल है अप्रिशिएट करना, वो हम देखते हैं कि आजकल अप्रिशिएटिव इंक्वायरी जो है कि हर एक व्यक्ति के वर्चुअस को समझकर आप उसको अप्रिशिएट करो, लेकिन अप्रिसिएशन के साथ साथ एम्पावर करना। कई बार आप देखेंगे कई लोगों से आप मिलते हैं, उनके कुछ एक या दो बोल भी आपको शक्ति प्रदान करते हैं।
That's very true.
जैसे हम कहते हैं भाई ये बोल तो वरदानी बोल गए, तो इट जस्ट एम्पावर्ड मी।
एक शब्द जो है आपकी जिंदगी, बहुत बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं,
और वो शब्द आपने पहले भी सुना है, आप जानते हैं, लेकिन उस समय उस व्यक्ति की जो फीलिंग्स है, उसके स्टेट ऑफ माइंड जो है, उसके जो गुड विशेज है, उसने आपको वो एनर्जी दी। तो इसलिए हमारे वर्ड सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं हो, अप्रिशिएटिव तो हो, लेकिन साथ में एम्पावरिंग भी हो, इंस्पायरिंग भी हो, तो वो वर्ड्स जो है वो वेल्थ जो है, उससे हम लोगों के जीवन को भी दिशा दे सकते हैं, हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं, हम रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन तो करना है, लेकिन हमारी उस समय वो स्टेट ऑफ माइंड कौन सी हो, पॉजिटिव हो, इतनी इजी हो और इतना गुड विशेस हो कि वो वर्ड्स जो है वो एक वेल्थ बन जाए, लोग उस शब्दों को यू नो याद करें, उन शब्दों के द्वारा उनको प्रेरणा मिले, क्योंकि उसके पीछे की फीलिंग्स जो है वो बहुत प्योर और पॉजिटिव है।
तो थॉट से शुरू करके शब्दों की पूंजी,
शब्दों की पूंजी बहुत इम्पोर्टेंट, और जहां हमको लगता है कि ये कार्य जो है 10 शब्दों में पूरा हो जा सकता है, उसको अगर हम 200-500 शब्द से वर्णन करते रहते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन नहीं,
वेस्ट जाता है। एट टाइम्स हम बिना बात के ही बोलते जाते हैं,
और वहां कहीं ना कहीं संकेत है कि विचारों की जो पूंजी है उसमें क्लैरिटी नहीं, क्योंकि शब्द और विचारों का आपस में बहुत संबंध है, और बोल जो एक बार निकल गया तो वो तो जीवन भर किसी व्यक्ति को प्रभावित कर लेता है। इसलिए ये पूंजी को भी हमें बहुत सही रूप से यूज करना है, जिसमें अक्यूमुलेशन, तो जितना हम देखते हैं कि इसमें पावर हम भरते हैं, शब्द की क्वालिटी जो है, उसके स्टेट ऑफ माइंड की क्वालिटी उस समय हमारी अगर बहुत प्योर रहती है और उसमें पॉजिटिविटी रहती है उस कार्य के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, तो एम्पावरिंग होते हैं। और फिर शब्दों के साथ फिर जुड़ा है कर्म,
एक्शन,
एक्शंस, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, उस अनुसार फिर हमारे एक्शंस भी इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। तो कर्म भी बहुत बड़ी पूंजी है, एक्शंस, तो एक्शंस ऐसे हो जो दूसरों को इंस्पिरेशन मिले, कोई को लगे कि इन्होंने जैसा किया मुझे भी करना है, मेरा भी जीवन ऐसा बने।
और इनफैक्ट ज्ञान के अगर रास्ते पर हम चल रहे हैं, सब कुछ जानते हुए अगर हम कर्म जो कर रहे होते हैं, वो यूजुअली देखा ये गया है कि पीपल लाइक इट एंड दे वांट टू फॉलो यू,
दे वांट टू फॉलो, उससे हमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो, क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो पहला हमें सेल्फ रिस्पेक्ट स्वयं महसूस होता है, वी फील गुड अबाउट आवर सेल्फ, वी फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्फ, वी फील दैट सेंस ऑफ इनर सेल्फ एस्टीम, और वो होगा और फिर दूसरों का रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा। और वो कर्म की पूंजी हमने इस रूप से यूज की, तो हमें कभी भी उस कर्म के लिए रिपेंट नहीं करना पड़ेगा, कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो वो ये तीनों ही अगर पूंजी को अगर हमने प्रॉपरली यूटिलाइज किया, पूंजी के रूप में देखा, इफ यू हैव इन्वेस्टेड ऑल दीज थ्री रिसोर्सेज इन द राइट वे, टाइम तो अपने आप ही बच जाएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है, इन्हीं तीनों में से कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है।
सिस्टर दीपा, ये आज हमने जो हेल्थ और वेल्थ के ऐसे एस्पेक्ट को लिया, जो कहते हैं कि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज जो बात होती है, तो जितना इम्पोर्टेंट हेल्थ है उतना ही इम्पोर्टेंट वेल्थ है, लेकिन वेल्थ का एक वो वाले एस्पेक्ट्स जो मनी से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि आपके शब्दों से, आपके कर्म से और आपके विचारों से जुड़े हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कैसे पूंजी की तरह लेकर वेस्ट ना होने दे, ये जो हमारी वेल्थ है इसे वेस्ट ना होने दे, इस एस्पेक्ट पे बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
आपके पास कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे या कुछ बात, कोई सजेशन हमें देना चाहेंगे, तो आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसका ये सफर चलता रहेगा। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीन एस्पेक्ट लेके आज हमने बातचीत शुरू की थी। हेल्थ और वेल्थ को समझा, हैप्पीनेस अभी बाकी है क्योंकि वही सच है। अब इजाजत दीजिए। ओम शांति। बात को तलाश रहे होते हैं, जिस एहसास को तलाश रहे होते हैं, उसमें सबसे ऊपर होता है खुशी। और आज अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में हम जानेंगे खुशी के ही बारे में। आप सबका स्वागत। ओम शांति। चाहे बात हो खुशी की, चाहे प्यार की या फिर शांति की, एक बात का एहसास हमें हुआ है कि वो हमारे अपने ही अंदर है, लेकिन कैसे उसे पहचानना है, कैसे उसे इमर्ज करना है और कौन से वो एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझते हुए, जानते हुए, उन्हें अच्छी तरह से खंगालते हुए फिर इम्प्लीमेंट करना है, अनुभव प्राप्त करना है। पिछली बार हमने बात की थी हेल्थ की और वेल्थ की, और उसके बाद बात आती है हैप्पीनेस की। इन तीनों के बीच का रिश्ता क्या है और क्या उनके बीच का बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है? हेल्थ और वेल्थ को एक साथ प्राप्त करते हुए क्या हम खुशी को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत से एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर अभी बात करना बाकी है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर दीपा, उनसे बात करते हैं। सिस्टर दीपा, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
अगर हम पिछली बात करें तो हमने देखा था कि किस तरह से हेल्थ की जब बात की थी, जहां तक हेल्थ की बात थी, शारीरिक रूप से जो हेल्थ है, सही तरह का न्यूट्रिशन की बात की थी, और मानसिक हेल्थ जो थी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी, और उसमें न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और
रेस्ट,
जो रेस्ट था, वो तीन एस्पेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट थे। वेल्थ को जब हमने देखा, पूंजी की बात की थी, तो थॉट्स की पूंजी की बात, शब्दों की पूंजी, और फिर जो हम एक्शन करते हैं उसकी पूंजी, उसे कैसे लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पे, जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो मनी, जिसे हम सर्वोपरि मानते हैं, वो चाहे सर्वोपरि नहीं हो अगर हम पूरी जर्नी को देखें, लेकिन काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सही पर्सपेक्टिव क्या है उस मनी को देखने का, परखने का?
वेल्थ जो है वो कमाना तो जरूरी है, क्योंकि हमारी जो जवाबदारियां है उसको भी हमें निभाना है, शरीर को भी हमें संभालना है, जो परिवार है, कारोबार है, तो एक मीन्स है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम देखें उसके पीछे विजडम बहुत जरूरी
है,
वाइज होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं कि हम धन कमाने के पीछे हम इतना अपने हेल्थ को भी गंवा देते हैं, अपनी खुशी को भी गंवा देते हैं कि वो स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो धन प्राप्त होता जाए या धन की वृद्धि होती जाए, लेकिन अगर खुशी कम होती जाए, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो फिर वही वेल्थ हमें जो सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, जो कंटेंटमेंट होना चाहिए, जो एक लाइफस्टाइल में हमें इम्प्रूवमेंट हो, वो नहीं होता। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, वो हम थोड़ा एम्पावर कर लेते हैं, एक बेहतर घर, एक बेहतर लाइफस्टाइल हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन जो हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए
वो नहीं रहती। और वो जो हमने लाइफस्टाइल बनाया भी है, जो हमने अपना आप कह रहे हैं कि एनहांस किया भी है, उसे एंजॉय करने के भी मोमेंट्स नहीं रहते
क्योंकि इतना प्रेशर रहता है।
बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो पैसा कमा रहे हैं, जो ये वाली वेल्थ है, उसमें हम वो तीनों जो एस्पेक्ट हमने वेल्थ के लिए थे, थॉट्स की, शब्दों की, और जो हमारे पास जो दूसरी तीसरी पूंजी थी, उन तीनों को भी कहीं हम तालमेल नहीं बैठा पाते।
सही बात है। अगर हमारे थॉट्स में क्लैरिटी है, हमारे वर्ड्स जो हैं उसमें हम विजडम है, हमारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत क्लियर हैं, वर्ड्स जो हैं उसमें स्वीटनेस है, तो हम देखते हैं हमारे एक्शंस भी इंस्पायरिंग है, तो हमें वेल्थ आएगी ही। क्योंकि ये चीजें अगर राइट है तो धन कहाँ जाएगा, वो आएगा ही। जितना आपको जरूरत है उससे भी ज्यादा आ जाएगा, सेवा अर्थ भी आपके पास आ ही जाएगा। तो धन तो आना ही है, लेकिन ऐसा ना हो कि उसको कमाने के पीछे जो रास्ता हमने अपनाया उसमें हमारी खुशी और हमारा स्वास्थ्य गंवा दे। तो विजडम जरूर होना चाहिए। और फिर उसको कैसे हम यूज करते हैं, धन तो आया लेकिन ऐसे नहीं हो कि हम उसको इतना रूप से, विजडम नहीं हो तो हमने वाइजली उसको यूज नहीं किया, उसको राइटली इन्वेस्ट नहीं किया है, तो वो धन जो है वो कंटेंटमेंट नहीं दिलाता। तो इतना प्रेशर और टेंशन रहता है।
तो जिस खुशी को हम तलाश रहे थे, हमने देखा कि क्या हमें वो खुशी सही हेल्थ या वेल्थ, वेल्थ को अगर हम इसी पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि मनी ही है तो वो नहीं दे रही है, तो पूरा एस्पेक्ट लेते हुए अब खुशी पर आते हैं। ये एक ऐसा आधार है जिंदगी का जिसे हम सब तलाश रहे होते हैं, और वो इतनी क्षणभंगुर लगती है। मुझे ये हो जाए तो मुझे खुशी मिलेगी, वो हो गया, खुशी मिली, और फिर एक नए होने की तलाश शुरू हो जाती है। सो वो खुशी शाश्वत कब होगी, को क्या खुशी होगी, एंड व्हाट इज द एक्चुअली रियल एस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो खुशी क्या है।
ऐसे हम जीवन में देखें, हम हमेशा इस खुशी को ढूंढते ही रहते हैं। वी ऑलवेज शॉपिंग फॉर हैप्पीनेस एवरीवेयर वी गो। लेकिन हम जो खुशी प्राप्त कर लेते हैं वो बाह्य कोई ना कोई वस्तु के आधार पर है। कोई चीज हमें प्राप्त हो जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। कोई संबंध में कोई स्नेह मिल जाता है, कोई संबंध हमारे लिए क्लोज हो जाता है, उस संबंध के आधार से हम खुश हो जाते हैं। कोई सिचुएशन हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, कोई हमने कार्य किया उसमें हमें सक्सेस मिल जाता है, अवार्ड मिल जाता है, रिकग्निशन मिल जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। ये खुशी भी जरूर है, लेकिन ये खुशी का आधार बाहर है, इसलिए ये कहीं ना कहीं सुपरफिशियल है और थोड़े समय के लिए चलती
है, क्षणभंगुर रह जाती है
थोड़े समय के लिए। तो जैसे कोई वस्तु मुझे मिली, मैंने कोई अच्छी वस्तु खरीद ली, कोई गाड़ी है या कोई मोबाइल है, बहुत अच्छा लेटेस्ट जो हमारा मोबाइल है हमने खरीद लिया, लेकिन जैसे ही हमारे फ्रेंड या ऑफिस में कोई कलीग को उससे भी बेहतर, उससे भी ज्यादा उसमें चीजें कर सके वो मोबाइल आ गया, तो मुझे इस मोबाइल से भी उतनी खुशी नहीं होती। गाड़ी जो है कोई और बेहतर लेटेस्ट मॉडल निकल गया तो मुझे लगता है वो मॉडल जब तक मुझे नहीं मिले ना मैं खुश नहीं रह सकता, बिकॉज माई हैप्पीनेस इज बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग आउटसाइड। तो इसलिए वो चीजें बदलती रहेगी, इसलिए हमारी खुशी की जो अनुभूति है वो भी बदलती जाती है। तो अगर हमारी इनर हैप्पीनेस को हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो स्टेबल है, वो इंटरनलाइज्ड है, इसलिए वो हमारे हाथ में है। और फिर हम उस खुशी में रहते हैं तो जो कार्य हम करते हैं उसमें हम खुशी क्रिएट भी कर सकते हैं, औरों को भी खुशी दे सकते हैं
और उसका अनुभव भी कर सकते हैं।
अनुभव
बात, क्योंकि हर बार हम ये बात करते आ रहे हैं कि ये जो हमारे वर्च्यूज हैं, हमारे अपने ही जो वैल्यूज हैं, ये संस्कार, मूल संस्कार, उसमें खुशी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट
है।
इट्स विद इन लेकिन उसे इमर्ज करना, उसे अनुभव करना, तो वो जो तरीका है वो मेडिटेशन से हमने समझा है, लेकिन आम जिंदगी को जीते हुए वो अनुभव, वो इमर्जेंस कैसे हो।
तो मुझे खुशी के लिए पहले तो ये समझना है कि मुझे अपने आप को खुश रखना ये मेरी जिम्मेवारी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। कोई कहे बहुत
everyone else is responsible. तो अपनी खुशी के लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ।
या तो आज तक हमने सोचा नहीं बाहर की परिस्थितियां और व्यक्ति ही मेरे खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन आई एम रिस्पॉन्सिबल टू कीप माई सेल्फ हैप्पी। अगर आप खुश हैं तो आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप दुखी हैं तो आप दुखी रहना चाहते हैं। चॉइस आपका है। अब ये स्वीकार करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्यों हम नहीं दुखी रहना चाहते फिर भी हम दुखी, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को खुश रखने की जवाबदारी नहीं महसूस कर रहे। परिस्थितियां आती है, सिचुएशन जो है वो तो परिवर्तनशील है, न्यू थिंग्स कैन कम, चैलेंजेस तो आएंगे, ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, बातें तो बाहर से आनी ही है क्योंकि एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो वो जो चीजें आती है उसको अगर हम उस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं कि ये एक लर्निंग प्रोसेस है, मुझे इससे बाहर निकल कर कोई आगे उन्नति के रास्ते पर ही जाना है। ये बातें आई है, थोड़े समय के लिए इस चैलेंज है उसमें मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए आई है, मैं उस वर्चुअल कैपेबिलिटीज को अपना एक्वायर कर लेता हूँ, इमर्श कर लेता हूँ, तो आगे मैं चला जाऊंगा और फिर ये सोल्यूशन सामने दिखाई दे रहा है उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ तो आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन वो फीलिंग नहीं है और हम उसमें स्टिक हो जाते, उसमें स्टक रह हो जाते कि भाई नहीं ये ऐसा क्यों हुआ, इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, तो हम अपने को दुखी महसूस करते हैं और फिर वी गेट ट्रैप्ड। क्या करते
फिर हम उसे बाहर ही नहीं निकलना
बाहर
चाहते,
नहीं निकलना
लुक फॉर द सॉल्यूशन,
सेल्फ पिटी में आ जाते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, लाइफ ही मेरे साथ ऐसा है,
सब कुछ हो गया है,
इतना सब कुछ हो गया, एंड देन पीपल स्टार्ट शोइंग दैट पिटी एंड कंपैशन, तो हम उसको एंजॉय करते हैं, हम उसमें खुशी महसूस करते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप आवरसेल्फ हैप्पी। सिचुएशंस विल कम विच आर अनहैप्पी, डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसमें से मुझे कैसे बाहर निकलना है, मुझे ऑप्शंस जरूर है मेरे पास चॉइस है, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ सिचुएशंस के लिए, वो चॉइस मेरे पास, तो मुझे उससे बाहर निकलकर फिर से अपने आप को खुश रखना है।
वंडरफुल, एक्चुअली दैट्स अंडरलाइंड, जहां हमने ये बात की थी कि मूल जो मेरा स्वभाव है वो खुश रहना है, उसे इमर्ज करना है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर है, आई थिंक दैट शुड बी अंडरलाइंड, क्योंकि यहां जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मैं खुद खुश रह सकती हूं, उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है, तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। लेकिन एक बात यहां जुड़ी ये आती है कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तो हर सिचुएशन में खुश रहता हूं, मैं कभी भी कुछ भी हो जाए मैं बाहरी तौर पर जो है कभी शो ही नहीं होने देता, मैं खुश ही रहता हूं, हंसता ही रहता हूं, लेकिन वो क्या सही है, क्योंकि आंतरिक जो है वो तो तकलीफ है ही, अंदर जो पेन का एक वो पोटली लेके हम चल ही रहे हैं, लेकिन ऊपर से हम ये रहे कि नहीं, ऊपर से तो हर सिचुएशन में कभी किसी को पता ही नहीं चलने देता कि मैं अंदर क्या हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, तो वहाँ क्या कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अपने साथ?
वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और वो फिर आपको बहुत ज्यादा समय वो खुशी को सस्टेन नहीं कर सकेगी, और अंदर की खुशी अगर नहीं है तो बाहर आप कहाँ कहाँ कोई सिचुएशंस में आप आडंबर रख सकते हैं, आप थोड़ा सा एक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर आंखों से तो दिखाई देता है, जो आपसे क्लोज हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ रह रहे हैं, थोड़े से समय के बाद वो तो फील होता है, और अगर आप खुश हैं तो आप खुशी का वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो यू कैन नॉट क्रिएट हैप्पीनेस, यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, द साइन ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, अगर अंदर से खुशी है तो एक तो आप चीयरफुल रहेंगे, ये बहुत सुंदर जो हमारी जो खुशी है उसका एक प्रमाण है कि हम चीयरफुल रहेंगे, तो वो हमारे व्यक्तित्व में चीयरफुलनेस नेचुरल हो जाएगी, हर्षित मुक्तता जो है वो नेचुरल हो जाएगी, मधुरता जो है वाणी में नेचुरल हो जाएगी, और कारोबार करने में हमेशा एंथुजियास्टिक एनर्जी फील होगी, लेकिन अगर अंदर से खुशी नहीं है तो चीयरफुल भी हम बहुत समय नहीं रह सकते। स्माइल डजंट बिगिन आउटसाइड, इट बिगिन समवेयर विद इन। देयर आर मेनी प्रोफेशंस, आजकल कई प्रोफेशंस हैं जिसमें उनको स्माइल करना पड़ता है, लोगों को वेलकम करना पड़ता है,
यू कैन
ऑलवेज मेक इट आउट कि भाई अंदर में नहीं है, आंखों में वो खुशी नहीं दिखाई दे रही, सो इट हैज टू बिगिन फ्रॉम समवेयर विद इन टू गिव अ फील टू दैट अदर पर्सन। तो अगर मैं खुश हूँ तो ही मैं सामने वाले व्यक्ति को भी खुशी का अनुभव करा सकता हूँ, उसको खुश फील करा सकता हूँ, वो एनवायरमेंट क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ दूसरे भी खुश हो सके।
बिल्कुल, और जहाँ तक बात ये आती है, एक बार हम अभी आपने पहले भी बात कही थी कि हमें इतनी आदत हो चुकी है, आदत हो चुकी है दुख को आत्मसात करने की, और जहाँ खुशी मिलती है उसके बावजूद भी, क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है, जहाँ सिचुएशन आते ही हम हमेशा विक्टिम बन जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो जो विशेष सर्कल है वो ब्रेक करना, अगर मैं जनरली बात ये देखें तो हैप्पी गो लकी लोग जो हैं वो भी इस विशेष सर्कल में फंस जाते हैं,
बिकॉज मुझे ये समझना है कि नोबडी कैन टेक अवे माय हैप्पीनेस
एंड नोबडी कैन गिव मी आल्सो हैप्पीनेस,
नोबडी कैन गिव मी आल्सो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज इंडिपेंडेंट, हैप्पीनेस जो है वो बाहर की सिचुएशंस और रिलेशनशिप से इंडिपेंडेंट है, आई कैन गिव हैप्पीनेस और जितना मैं देती हूँ ऑटोमेटिकली मिलता है, बट नोबडी कैन टेक अवे माय हैप्पीनेस इफ आई टेक केयर ऑफ इट, अगर मैं उसको संभालती हूँ, अगर मैं उसको अंतर से अनुभव करती हूँ, अपने एक अंतर की एक वर्च्यू के रूप में, एक नेचर के रूप में महसूस करती हूँ, देन नोबडी कैन टेक इट अवे अंटिल आई डोंट अलाउ देम टू। मैंने उनको इतना महत्व दे दिया उस बात को, उस परिस्थिति को, मैंने उस संबंध में जो नेगेटिविटी है उसके बारे में इतना सोचा कि मैं फिर वो दुख का अनुभव करने लगी, उसने ऐसा बोला, उसने ये बोला, कभी हम देखते हैं कि एक छोटी सी बात भी
थॉट्स, बिल्कुल कंप्लीट वेस्ट थॉट्स,
ने मेरे बारे में कुछ कह दिया किसी और को, बस उसने ऐसा कहा, तो ऐसे मिसाल में देखते हैं कि एक हाथी है और एक चींटी, हाथी का अस्तित्व तो जरूर शक्तिशाली है, चींटी तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वो चींटी अगर हाथी के कान में चली जाए तो वो मूर्छित हो जाता है, तो एक छोटी सी बात भी मेरे कान में पड़ गई कि इस व्यक्ति ने आपके लिए ऐसा ऐसा कहा,
बस
बस मेरी खुशी मूर्छित हो गई, बस आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। सुबह से लेकर वही चिंता हो जाती है कि भाई क्यों इसने ऐसे मेरे लिए क्यों किया, मैंने इतना उसके लिए किया, इतना मैंने उसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचा, मैंने उसको हमेशा सपोर्ट दिया, उसने मेरे लिए ऐसा कहा। और जब एक्चुअली कभी कभी बातचीत हो जाती है तो पता पड़ता है कि उस बात में कोई
कहा ही नहीं,
या हम दूसरों को देखते हैं इसने मेरे बारे में ऐसा सोचा, या मुझे देखकर आज मुझे विश नहीं किया गुड मॉर्निंग, वो तो सामने से चला गया, आज बॉस को मैंने गुड मॉर्निंग विश किया उसने मुझे देखा ही नहीं, और सारा दिन मैं उसकी वजह से अपसेट हूँ। क्या हुआ पता नहीं, नाराज है, कोई मैंने एक्टिविटी कल जो की थी कुछ रिजल्ट नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ उसकी वजह से, अब क्या होगा, मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, मेरा इवैल्यूएशन हो रहा है उसमें मुझे अच्छे यू नो मार्क्स मिलेंगे या नहीं, मुझे आगे चल के प्रमोशन मिलेगा नहीं, कितनी चिंता, मेरी खुशी गायब हो जाती है। और शाम को अगर मेरी बात हो भी जाए मेरे बॉस से, मैं उसको पूछूंगी अरे सुबह मैंने आपको विश किया था सर, अच्छा मुझे ध्यान में ही नहीं रहा, मैं इतना बिजी था, मैं अपने ध्यान में चल रहा था, मैंने देखा ही नहीं, बात तो कुछ भी नहीं होती कहीं,
लेकिन वी वेस्टेड द होल डे,
वी लॉस्ट आवर हैप्पीनेस। सो आज हम देखते हैं कि दुख लेने का भी एक अभ्यास हो गया, तो हम देखते हैं
आध्यात्मिकता
ढूंढते रहते हैं। आध्यात्मिकता में कहा जाता है ज्ञान में कि दुख न देना है लेकिन दुख लेना भी नहीं है, तो हम दुख न देना ये बात तो समझ लेते हैं और नहीं देते, वो अटेंशन रहता है, लेकिन लेना बहुत इजिली ले लेते हैं, आसपास कोई भी बात ऐसी होती है बस हम एब्जॉर्ब करते जाते हैं उस दुख को, और फिर इनर हैप्पीनेस हमारी समाप्त हो जाती है। सो हैप्पीनेस कैन कम ओनली व्हेन वी थिंक पॉजिटिव अबाउट आवर सेल्फ, आवर रोल एंड ऑल्सो अबाउट अदर्स, उनके प्रति और सिचुएशन के प्रति।
सुदीपा, बहुत से मिथ जुड़ी हैं जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो तभी होगी अगर वो वैसा बिहेव करेंगे, अदरवाइज आई कांट बी हैप्पी। मतलब कितनी बार संबंधों में ये देखा गया है कि मैं तो इतना प्यार करती हूँ लेकिन वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मैं खुश कैसे रहूंगी। जनरली और भी कई चीजें हैं, बच्चा मेरी बात नहीं मानता है तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ, मेरी जिंदगी में खुशी है ही नहीं, मेरी जिंदगी में कभी खुशी आ ही नहीं सकती। तो ये जो मिथ्स हैं इनसे, ये जो एक विशेष सर्कल में हम हर बार घुसते हैं, सो हम एक एक करके अगर उन मिथ्स के साथ गुजरे।
हाँ जी, तो अगर हम देखते हैं रिलेशनशिप्स में तो ये मिथ है ही कि जब तक कोई मुझे स्नेह नहीं दे, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करे, मैं खुश कैसे रहूं, वो स्नेह ही नहीं देता है वो व्यक्ति, मुझे कभी समझता ही नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो ये चीजें ऐसी है कि जितना हम ये अनुभव करके दूसरों को देते हैं उतना वापस आती है, जितना हम लोगों को समझते हैं उतना ही वो व्यक्ति मुझे समझ सकता है। दूसरा, हमें समझना है, परखना है कि ये व्यक्ति के पास इस समय वो वर्च्यू या कैपेबिलिटी है, शायद वो मेरी बात नहीं समझ रहा है क्योंकि इस समय उसकी मानसिक स्थिति नहीं है वो समझने के लिए, या इस समय उसके पास वो कैपेबिलिटी या वर्च्यू इमर्ज नहीं है, और मैं कोशिश करूँ ये व्यक्ति मुझे समझे ही, ये मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं देता।
अडैप्टेबिलिटी वाली बात भी आ जाती है,
अडैप्टेबिलिटी वाली बात आ जाती है। तो हम अगर समझ लिया हमने कि व्यक्ति की इस समय मनोस्थिति नहीं है तो हम उसको कैसे वो रिस्पेक्ट की फीलिंग दिलाएं, जब उनको वो अनुभव होगा हम उनको कंसर्न दें तो जो चीज हम देते हैं वो वापस आनी है, इट विल कम। तो जैसे आप स्नेह देते जाएंगे, लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, उनके साथ उस रूप से रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे, उनको कंसर्न देंगे, कंपैशन देंगे, केयर देंगे, तो वो रिलेशनशिप जो है उसमें समीपता आती जाएगी, क्लोजनेस आती जाएगी।
लेकिन यहाँ कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं जितना देती जाऊंगी, देती जाऊंगी मुझे ट्रैम्पल कर दिया जाएगा, मुझे ट्रैम्पल करके मेरा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जितना मैं देती जाऊंगी तो मुझे कहीं ना कहीं तो मांगना ही पड़ेगा।
सही बात है। तो ऐसे व्यक्ति से हम लेना चाहेंगे जरूर जो सोर्स है नहीं, क्योंकि व्यक्तियों के साथ तो हम लेते जाएंगे तो हम देखते हैं कि कहाँ मिलता है कहाँ नहीं भी मिलेगा, और वो तो टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए व्यक्ति तो हमारे साथ सदा रहेगा भी
नहीं, और उनकी कैपेबिलिटी भी
कैपेबिलिटी तो सोर्स के साथ हम लें तो हम देखें ये जो वर्च्यूज हैं, हैप्पीनेस है, लव है, पीस है, उसका सोर्स तो परमात्मा है, शिव बाबा है, तो हम उनके साथ अगर संबंध जोड़कर एक कंटिन्यूस रिलेशनशिप हो जाए, उनसे हम लेते जाएं, अपने को एम्पावर करें, उस पावर्स को एक्सपीरियंस करें, तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट गिविंग। जब हम भरपूर हो जाते हैं तो देना अपने आप शुरू हो जाता
है, फ्लो होने लगता है।
अगर खालीपन है तो ही हम सोचते हैं कि नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, हम भरपूर हो जाते हैं तो देना, और दो खाली बर्तन अगर आपस में आते हैं तो टकराव तो होगा ही ना, तो इसलिए हम जब भरते जाते हैं अपने आप को, वी फील दैट love from God, we feel that inner happiness, so automatically hum dekhte it just starts flowing, we start giving naturally, हमें सोचना नहीं पड़ता है मुझे देना है, लेकिन नेचुरल लेवल पर हम देना शुरू करते हैं। हम अपने संकल्पों के द्वारा देते हैं, व्यक्तियों के प्रति हमारी गुड विशेस नेचुरल हो जाती है। जिसको भी हम देखते हैं, हम एक परमात्मा की संतान के रूप में आत्मिक भाव से देखते हैं, तो उसकी वर्च्यूज को भी समझते हैं, उसकी वीकनेसेस को भी समझते हैं, लेकिन हम वो अकोमोडेट कर लेते हैं। उनकी कमजोरियों को समाते हुए भी उनकी वर्च्यूज को हम फोकस करते हैं, उनके साथ हम कार्य करते हैं, उन वर्च्यूज के साथ उसको हम एक्टिवेट करते हैं, एम्पावर करते हैं, तो वो भी रिलेशनशिप जो है इजी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि लेने से लेना है, लेकिन सोर्स से।
ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज नाउ वी नो एक्चुअली वी हैव द सोर्स। जब हमने पहचान कर ली परमात्मा की, तो फिर हमें दैट्स वेरी ब्यूटीफुल,
वो अनलिमिटेड सोर्स है, अनकंडीशनल भी है,
वो कुछ मांग नहीं रहे,
मांग नहीं रहा, जितना आप लेना चाहें ले सकते हैं। और फिर व्यक्तियों के साथ संपर्क में आते हैं तो हम देते हैं और नेचुरल हो जाता है। फिर देने के लिए संकल्प नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट सपोर्टिंग अदर्स, वी क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर पीपल फील गुड, जहाँ लोग खुश रह सकते हैं, जो लोगों को भी एक सेंस ऑफ वेलबींग फील होता है।
दैट यस, दैट एक्चुअली आई कैन एक्सपीरियंस की दैट रियली स्टार्ट्स हैपनिंग। और जहां तक बात यह है कि हमने दो बातें कही अभी कि दो तरह की खुशियां या हैप्पीनेस की बात होती है, कि एक बाहरी है जो हम बाहरी एस्पेक्ट को, जिसे हम जो क्षणभंगुर भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग होती है एकदम से, अगर हम वो
दिखाई भी देती है,
हाँ दिखाई भी देती है, और कहीं ना कहीं वो एकदम से जो पूरा केमिकल चेंजेस का जो पूरा प्रभाव है बॉडी पे वो भी हो जाता है, और एक वो इंटरनल हैप्पीनेस विच कैन रिमेन परमानेंट। सो हाउ डू आई एक्चुअली डिफ्रेंशिएट, थोड़ा सा तो मुझे समझ में आ गया कि कैसे किए करें,
बट वी कैन एंजॉय दैट हैप्पीनेस ऑल्सो, जो सुपरफिशियल हैप्पीनेस है, जो टेम्पररी हैप्पीनेस है, एंजॉय हम कर सकते हैं, लेकिन वी कांट बेस आर सेंस ऑफ इनर वेलबींग ऑन दैट। हमारे अंतर की जो मन की स्थिति है उसके आधार पर अगर रहती है तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है,
क्योंकि वो तो चली जाएगी।
फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वापस वही दुख की फीलिंग में आ जाएंगे, फिर एक लॉस फील होगा, फिर एक फेलियर अंदर से फील होगा, फिर अंदर से फिर से वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, फिर वो खालीपन आता है, फिर हम शॉप करते हैं, फिर कहीं और ढूंढते रहते हैं। तो वो बेस नहीं करना है, उसको एंजॉय करना है, एक्सेप्ट करना है, जैसे एक साइट सीन है, जैसे लाइफ एक जर्नी है, तो उसमें ये साइट सीन्स है, हम एंजॉय करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके प्रति हैप्पीनेस रहता है। लेकिन द थॉट इज दैट एवरी मोमेंट आई कैन क्रिएट, समथिंग इज कमिंग टू मी विच इज गिविंग मी हैप्पीनेस, पर आई ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी कि मैं इस मोमेंट में क्रिएट कर सकती हूँ हैप्पीनेस दूसरों के लिए।
हाँ, बिकॉज द मोमेंट दैट सिचुएशन गोज, देयर इज अनदर सिचुएशन, आई हैव द कैपेबिलिटी टू क्रिएट।
यस, एंड व्हेन आई क्रिएट हैप्पीनेस दैट ब्रिंग्स मी मोर हैप्पीनेस, यू नो दैट्स द रियल जॉय। हमारा हायर पर्पस लाइफ का जरूर है टू क्रिएट हैप्पीनेस फॉर अदर्स इन विच एवर वे। एवरीवन हैज देयर रोल, हमारा हरेक का अपना प्रोफेशन है, अपनी कैपेबिलिटीज है, उस अनुसार परमात्मा ने हम सबको एक ऊंचा उद्देश्य दिया है कि आप खुशी क्रिएट करो लोगों के लिए, इस दिशा से, कोई किस दिशा से, तो वो हमें बहुत आनंद आता है। फिर हम अपने उस ऊंचे उद्देश्य के प्रति भी हम अपने दिशा को महसूस करते हैं,
जैसे हम ब्लिस कहते हैं,
आनंद, हम ब्लिस कह सकते हैं,
आनंद का जो भाव है। तो हमने बात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से की थी कि इन तीनों के बीच का जो तालमेल है, किस परिपेक्ष में अगर हम देखें तो ये तीनों एक उस पे हमें दिखाई देंगे।
खुशी जैसे हम कहते हैं खुराक नहीं है, देयर इज नो बेटर नरिशमेंट देन हैप्पीनेस फॉर द माइंड एंड फॉर द बॉडी। तो हम देखते हैं खुशी जब है तो फिजिकल हेल्थ भी हम देखते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आपको सस्टेन आप कर सकते हैं। अगर फिजिकली इलनेस भी है, एलिमेंट है, लेकिन खुशी है तो आप उस एलिमेंट को भी बहुत कम समय में और इजिली हीलिंग प्रोसेस हो जाता है, तो डॉक्टर्स भी एक्सेप्टेबिलिटी भी आ जाती है। और डॉक्टर्स भी हम आजकल कहते हैं भाई वो व्यक्ति हीलिंग प्रोसेस जो है बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस आ जाता है, वो खुशी से वो मेडिसिन लेता है, ट्रीटमेंट लेता है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड जो है और वो इंस्पिरेशन बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के पास जब आप मिलने भी जाते हैं, कोई बीमार है लेकिन खुश है, तो हमको क्या लगता है, यू नो हम उससे कुछ देने नहीं जा रहे, हम उससे
ले रहे हैं।
तो आप ऐसे यू नो अवस्था में भी लोगों को इंस्पिरेशन दे सकते हैं अगर आप खुश हैं, यू एक्सेप्ट एंड यू कैन सी दैट सिकनेस विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जैसे अगर आप बीमार हैं तो आपके पास समय है, आप जो और कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं, आप कोई अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी आपके पास सीरीज है जो आप देखना चाहेंगे, कुछ इंट्रोस्पेक्टिव एक्टिविटी है, मेडिटेशन है आप कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप बात करना चाहें, तो आप वो समय को बहुत अच्छे रूप से क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुश हैं तो आप इस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से उस फिजिकल एलिमेंट को देख सकते हैं, नहीं तो ये लगेगा कि क्यों मैं ही बीमार, हर बार मैं बीमार होता हूँ, मुझे ये फिजिकल इलनेस क्यों आया, शायद मैं ये नहीं खाया होता तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो हम कहीं ना कहीं उस बात को यू नो दुख की फीलिंग में ही बिता देते हैं, उस फिजिकल एलिमेंट को भी। और अगर हम देखें तो माइंड को भी नरिश करता है, क्योंकि खुशी जहाँ है वहाँ क्रिएटिविटी बहुत
सुंदर हो जाती है। यस,
हैप्पी पीपल आर ऑलवेज क्रिएटिव पीपल। उनको नए रूप से सोचना, नए विचारधारा में अपने आप को दिशा देना बहुत सहज हो जाता है। तो एक्टिविटीज भी जो आप करेंगे प्रोफेशनल लेवल पर, आप देखें आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए हम देखते हैं वो खुराक भी बहुत अच्छी है, लेकिन खुशी जैसा खजाना भी बहुत सुंदर कहा जाता है कि खुशी जैसा खजाना नहीं है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, कि कोई भी परिस्थिति तो संभाल के रखना है। तो जैसे तारी जी कहती हैं कि अगर आप कोई बात आ जाती है और वो बात आपकी खुशी ले जाए तो उसको नहीं जाने देना। कोई छोटी चीज भी हमारी होती है तो हम कहीं भूल कर भी आते हैं, या कोई व्यक्ति बाय मिस्टेक ले जाता है तो हम कहते नहीं ये मेरी चीज है, ये मेरा कर्चिस है, या ये मेरी चीज है, आप ये नहीं ले सकते, ये मेरा है। लेकिन हमारी खुशी जो सबसे अमूल्य खजाना है, वो कोई छोटी सी परिस्थिति आई, वो बात आई और वो बात तो चली गई, वो व्यक्ति ने कुछ कहा, वो व्यक्ति शायद भूल भी गया उसने क्या कहा, वो जाकर यू नो अपने कारोबार में लग भी गया, लेकिन मैं उस बात को बार बार याद करके अपनी खुशी को गंवा रही
हूँ। बहुत सुंदर।
तो खुशी जो है ये बहुत सुंदर एक खजाना है, उसको एक ट्रेजर के रूप में आप फील करें तो यू विल टेक केयर ऑफ।
तो खुशी जैसी खुराक नहीं और खुशी जैसा खजाना नहीं, तो यहाँ हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस का एक पूरा कॉम्बिनेशन हमारे सामने आता है। सुश्री दीपा, इस पूरी बातचीत के लिए, खुशी के इस एस्पेक्ट को बताने के लिए कि जहाँ चीयरफुलनेस है, जहाँ इस बात का एहसास है कि कोई भी सिचुएशन मेरे इस खजाने को, मेरी इस खुशी को नहीं लेकर जा सकती, क्योंकि मेरी अपनी क्रिएशन है, और अगर कभी मुझे कमी लगेगी तो मैं आई कैन ऑलवेज गेट कनेक्टेड टू द सोर्स एंड टेक इट एज मच एज आई वांट,
अनलिमिटेडली अवेलेबल ऑलवेज।
तो ये एक बहुत प्यारा एहसास है, ये पूरा एक खुशी का जो एहसास रहता है। तो और कहीं ना कहीं जहाँ हमारे पास ये चीयरफुलनेस है, पूरा वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। तो ये इतने अच्छे वातावरण का एहसास देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
जिंदगी में अगर देखें तो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम मुस्कुरा रहे होते हैं तो जग मुस्कुराता है। हमारा जो जो हमारे साथ चल रहा है, जो हमारा चेहरा है, जो हमारी मुस्कुराहट है, वो आईने की तरह चारों तरफ रिफ्लेक्ट होती है। और कहा भी जाता है कि जहां पाला सरल सीधी हंसी से पड़ता है उसका, वहां बेचारा गणित व्यर्थ होता है, क्योंकि तब एक और एक दो नहीं होते, एक और एक ग्यारह हो जाते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट इसी तरह से बढ़ती है। खुशी को सही परिप्रेक्ष्य में देखना, क्या वो बाहरी खुशी है, आर्टिफिशियल है, सुपरफिशियल है, लेकिन वो भी है, उसे भी इंजॉय कर सकते हैं, उसको साथ लेते रहते हैं, जो इंटरनल हैप्पीनेस है, जो वो ब्लिस आनंद की जो फीलिंग है, उसे अपने साथ बनाए रखिए। और अगर आपके पास वो है तो उसे किसी भी कीमत पर मत खोइए, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं और खुशी जैसा खजाना नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब यही है। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल जो आप हमारे साथ करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। आप हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं।
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वांट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, कॉल अस ऑन 09999744555।
अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज की इस कड़ी में अब वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन ये सफर यूं ही चलता रहेगा, आपसे मुलाकात होती रहेगी। अब इजाजत देते हैं। ओम शांति।
ॐ शान्ति ॐ।